देखिए, जब हम एडोलेसेंस या युवावस्था की बात करते हैं तो पहले तो हम सभी ये जानते हैं कि हम अलग-अलग अवस्थाओं से अपने जीवन में
बिल्कुल
गुजरते हैं।
जी.
कभी मतलब एक इन्फेंट होता है, फिर वो उनका अर्ली चाइल्डहुड होता है, मिडिल चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंट होता है, अर्ली अडल्टहुड होता है, एंड और लेट अडल्टहुड होता है।
जी.
तो हम जब भी इन स्टेजेस से गुजरते हैं तो अलग-अलग तरह के लाइफ चेंजेस हमारे साथ होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता है, लेकिन वो पेरेंट्स के लिए एक लाइफ चेंज है। फिर जैसे बच्चे थोड़े बड़े होंगे, अर्ली अडल्टहुड होगा, तो उनको उनका एक लाइफ चेंज होता है कि उनको स्कूल जाना है, अपना स्कूल शुरू करते हैं, बाहर की दुनिया पहली बार देखने लगते हैं। जब मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे होते हैं तो वो थोड़े से जो है वो बड़े हो जाते, थोड़ी समझ उनमें जो है वो ज़्यादा आ जाती है, अब वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं, देखने लगते हैं। और जब उनका मिडिल चाइल्डहुड जो है वो 11 साल तक की उम्र तक ख़त्म होता है, फिर 11-12 साल से उनका जो है एडोलेसेंट पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। तो अब एडोलेसेंट पीरियड क्या है? युवावस्था, मतलब युवावस्था वो अवस्था जिसमें अब जो एक व्यक्ति है, जो एक बच्चा है, अब वो एक स्टेप अपने लाइफ में आगे जा रहा है। मतलब वो अब उतना, आप उसको उतना बच्चों जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, उससे एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, एक तो बहुत सारे बॉडीली चेंजेस जो होते हैं वो युवावस्था अपने साथ जो है वो लेके आती है। इन बॉडीली चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं, एक तो उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है आपके साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आप में रह रहे हैं। कभी आप बहुत गुस्से में होते हैं, कभी किसी तरह के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप बहुत चिड़चिड़ा जो है वो महसूस करते हैं, कभी आपको लगता है कि एक तरफ जो कहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा फेज किसी के भी लाइफ में, ऐसा ट्रांजिशन फेज आता है जिसमें जो बच्चे, मैं कहूँगी, या जो हमारे युवा अवस्था में जो लोग होते हैं, वो बहुत कहीं ना कहीं एक थोड़ा टर्मोइल और कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो जो मेजर जो उनका बच्चों वाला फेज है, वो उस मेजर फेज से जो है उस
आगे बढ़
समय
जाते हैं.
आगे बढ़ रहे होते हैं।
जी.
तो इन्हीं सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे, और हम इस टॉपिक में बेसिकली तो यही बताएंगे कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि युवावस्था क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे कि युवावस्था में जो हम जो मानसिक जो बदलाव बच्चों में आते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर जो आपका जो बॉडीली चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, शारीरिक रूप से क्या बदलाव आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या क्या जो बच्चे हैं उनका मतलब कंटेम्प्ररी इश्यूज क्या है, आजकल सबसे ज्यादा किन चीजों को ध्यान देना पड़ता है कि वो जब बच्चे इस अवस्था में हैं तो वो किस तरह की कंपनी में पढ़ सकते हैं, या कैसे मेजर स्टेप्स ले सकते हैं जो उनके लाइफ में बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होते हैं, या तो उन्हें अच्छाई की तरफ, एक अच्छे करियर की तरफ और अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाते हैं, या उन्हें एक बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे जो है वो लेके आते हैं। तो इन सब विषयों पे भी हम लोग आज जो है वो कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, युवा अवस्था या जिसे एडोलेसेंट कहते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका पड़ाव है एक
जीवन का.
जीवन का सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब आप उसमें वो बच्चों वाला
फेज
जो
जो है
फेज जो है वो खत्म होके आप
खत्म हो
आगे
रहा
आते
है.
हैं आपसे। तो ये ट्रांजिशन है एक बचपने से एक अडल्टहुड की तरफ, क्योंकि आप एक युवा अवस्था से लेके आप एक जो है अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये जो आपकी स्टेज है, ये 12 साल की उम्र से जो है, लगभग 11-12 साल की उम्र से शुरू होके 18 साल तक रहती है। ये जो पीरियड आपका होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रैपिड फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम फिजिकल चेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे कि एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आता है। ग्रोथ स्पर्ट कैसे आता है? जो है आपकी जो मिडिल चाइल्डहुड होता है ना, उसमें थोड़ा कम हो जाता है ग्रोथ स्पर्ट, लेकिन जैसे ही आप एडोलेसेंस में आते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी बच्चों की हाइट जो है वो एकदम से जो है, हम कहते
बढ़
हैं कि
जाते हैं.
अभी तक तो ये बच्चा, जैसे जो बच्चे 6ठी 7वीं तक की कक्षा में लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है असेंबली में, वो सबसे पीछे चला जाता है। मतलब हाइट उसकी जो है, अमूमन ये देखा गया है कि इस तरह से होता है कि हाइट उनकी बढ़ जाती है, वेट जो है काफ़ी कुछ लोग पुट ऑन कर लेते हैं, स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करें तो लड़कियां जो है उनका वेट थोड़ा पुट ऑन हो जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दी फिजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस। उनका जो शोल्डर विड्थ है, उनके कंधे जो हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, उसी तरह से उनका हिप विड्थ और मसल स्ट्रेंथ भी जो है वो बढ़ती है। तो ये तो होते हैं कि कुछ तरह के जो है आपके फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, जिसे हम प्यूबर्टी भी कहते हैं, और ट्रांजिशन की तरफ आपको लेके जाता है. ये चेंजेस को जो हम प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं, ये बहुत ही ड्रामेटिक होते हैं, मतलब एकदम से आते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है. इसमें क्या होता है कि काफ़ी हार्मोनल चेंजेस, जैसे मैंने कहा कि उनका एक जो आपके हार्मोन्स हैं बॉडी के, उनमें काफ़ी जो है वो चेंज होता है, और वो आपकी आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर को और आपका जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसको इफेक्ट करता है. बॉडी साइजेस चेंज होते हैं, मसल फैट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, और सेक्सुअल मेच्योरेशन जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो इधर का इस स्टेज का एक पड़ाव होता है, वो सेक्सुअल मेच्योरेशन होता है. किस तरह से जो है, जैसे गर्ल्स में क्या बॉडीली चेंजेस होते हैं और बॉयज़ में क्या बॉडीली चेंजेस होते हैं, वो रहते हैं. तो अगर हम हाइट और वेट की बात करें, तो हाइट वेट इस चीज़ से रिलेटेड रहता है कि जो बॉडी फैट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके हाइट में और वेट में, और किस तरह से आपकी प्रोपोर्शन जो है बोन की और मसल टिश्यू की, वो जो है वो सही करता है, उसकी प्रोपोर्शन में किस तरह से जाता है. जो ग्रोथ स्पर्ट, जिसकी मैंने आपको बात बताई कि ग्रोथ स्पर्ट आता है, जिसमें ग्रोथ स्पर्ट का मतलब है एकदम से आप जो है आपकी शारीरिक जो जो स्थिति है वो बदलती है, लेकिन वो लड़कियों की जो है वो ज़्यादा जल्दी बदलती है. लड़कों की जैसे लड़कियाँ जो है 11-12 साल में हमें थोड़ी बड़ी दिखने
दिखने
लगती हैं,
लगते हैं जी।
और जो बॉयज हैं उनका ये जो ग्रोथ स्पर्ट है ये लड़कियों से अमूमन 1-2 साल के बाद ही जो है वो ज्यादा, अब मैं कहूंगी अपना ज्यादा गति जो है वो पकड़ता है. बहुत सारे चेंजेस लड़कियों में देखे गए हैं कि उनके शोल्डर्स जो होते हैं उनके, मतलब उनका बॉडीली चेंजेस कैसे आता है, वेस्ट लाइन की प्रोपोर्शनैलिटी किस तरह से ड्रॉप होती है. जो आपके सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनका बहुत इफेक्ट रहता है आपकी बॉडी पे. जो गोनाड्स हैं या सेक्स ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम गोनाड्स या सेक्स ग्लैंड्स कहते हैं, वो आ, आ, वो जो आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा उनका रोल जो है वो रहता है. दोनों बॉयज़ और गर्ल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होती हैं. जैसे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जैसे आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि बॉयज़ में मुस्टैशेज आती हैं, मूछें आती हैं, दाढ़ी आती है. तो इस तरह के जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज होते हैं. तो एडोलेसेंट से अगर हम ये समझना चाहें, तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से हम ये देखते हैं कि एक बच्चे से एक बड़े की तरफ जो हमारा फेज है, वो हमारी शारीरिक अवस्था से ही कहीं ना कहीं जो है वो सामने काफी एविडेंट होता है और वो नजर आता है. साथ ही साथ हमारे जो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस दिशा की तरफ इशारा करते हैं कि जो है हम में किस तरह से चेंजेस जो है हम वो आ रहे हैं. तो
जी
ये तो है कि हम किस तरह से एडोलेसेंट को डिफाइन जो है बता सकते
सकते
हैं
हैं जी।
कि युवावस्था क्या है. देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एडोलेसेंट स्टेज में हैं और आप जो है इस स्टेज के जो चेंजेस हैं उसे अच्छे से डील कर पाएं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस है और साइकोलॉजिकल चेंजेस है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी हैबिट्स और स्किल्स डेवलप करें जो आपको इन चेंजेस से डील करने में हेल्प करें. इन स्किल्स को या हैबिट्स को हम कहते हैं डेवलपमेंटल टास्क. मतलब हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इस एज पे अब आ गए हैं तो ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
बनती
वो
है
स्किल्स जो हम आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हम उन्हें बच्चा नहीं जो है वो समझते हैं. तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप छोटे होते हो, इन्फेंट या फिर चाइल्डहुड स्टेज जो आपका रहता है, तो उसमें जनरली जो डेवलपमेंटल टास्क होती है उसमें ये होता है कि आप किस तरह से खाना खाना सीखते हैं, आपका फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी मतलब चलना आपको कैसे आता है, और आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो सोशल और फिजिकल रियलिटी के हैं वो कैसे बनाते हैं, कैसे अपने आसपास की सराउंडिंग्स को जो है वो आप समझ पाते हैं. मिडिल चाइल्डहुड में हमारा जो टास्क रहता है वो आता है कि कुछ ऐसे फिजिकल स्किल्स जो जरूरी हैं, जैसे कि गेम्स खेलना. बच्चे ज्यादा जो आउटडोर गेम्स हैं वो खेलते हैं जब वो मिडिल चाइल्डहुड में होते हैं, और अप्रोप्रिएट सेक्स रोल्स जो होते हैं वो समझते हैं कि लड़के के क्या जिम्मेदारियां है, लड़कों को कैसे भी है, लड़का और लड़की क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड हु एम आई अ गर्ल और एम आई अ बॉय, और अगर मैं लड़की हूँ तो किस तरह से जो है मेरे मुझसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, या मैं एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्सेस. एक तो आप मिडिल चाइल्डहुड में कुछ ये बेसिक चीजें जो है वो पढ़ रहे समझ रहे होते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस जो है किसी भी इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करती है कि वो जो भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में, वो किस तरह से उन चीज़ों से डील करते हैं. जैसे कि आपके जो जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें आपको जो कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो हेल्प करती हैं, क्योंकि आप उन चेंजेस से बिल्कुल इफेक्टिवली डील करके, कोप अप करके, अडेप्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं. उसी तरह से अगर आप अपने लाइफ के हर एक स्टेज में उस स्टेज को अपना के आगे बढ़ते हैं, जैसे अपनी उम्र को अपना के आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो इजी हो जाती हैं, और वो आपको हैप्पीनेस ही जो है वो देती हैं. तो जो मेन डेवलपमेंटल टास्क जो हम बोलते हैं कि युवाओं से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक तो ये है कि अपने जो बॉडीली चेंजेस होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि उससे कई बार उनको कुछ चीजें उनको एम्बैरेसिंग लगती हैं, कुछ चीजें उनको बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, तो वो उन चीजों से कैसे कोप अप करते हैं, ये एक बहुत ये वन ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क है. दूसरा ये चीज है कि आप अपने एज मेट्स के साथ, मतलब जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके साथ जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जो मतलब जो भी सेक्सेस के साथ आप हैं, उनके साथ आपके एक हेल्दी रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं, क्योंकि वो हेल्दी रिलेशनशिप्स आपके आने वाले समय में भी आपके लिए हर एक चीज का एक रिपल इफेक्ट होता है. हर एक चीज जो होती है वो दूसरी किसी ना किसी सिचुएशन से जो है वो रिलेटेड होती है. तो उन चीजों से आप किस तरह से डील करते हैं, आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स को, सोशल रोल्स को कैसे अडेप्ट करते हैं, आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस किस तरह से आप जो है वो गेन करते हैं. जैसे पेरेंट्स आपको ये भी कहते हैं कि जिम्मेदार बनो, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब है कि आप किस तरह से अपने लाइफ के ट्रांजिशन से डील कर रहे हैं. अगर आपको कहा जाता है कि आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप जो है हर बात पे जिद करें, और आपको थोड़ी समझदारी करनी चाहिए, वो एक चीज है. दूसरी तरफ आपको कहा जाता है कि आप इतने भी समझदार नहीं होंगे कि आप अपनी जिंदगी का हर एक डिसीजन ले सके, तो उसके बीच का जो चीज है, उसके बीच का जो आपका एस्पेक्ट रहता है, उससे आप कितने एक हेल्दी मैनर में जो है वो डील करते हैं. इस समय भी पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी रहता है कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं, उनके उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको किस तरह से एक प्रोडक्टिव मैनर में उनको फुलफिल करते हुए कैसे आगे चलते हैं. मतलब जैसे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इस समय में बच्चे की हर डिमांड पूरी करोगे, जो कि विच इज़ ऑलवेज नॉट अप्रोप्रिएट एट एनी एज, लेकिन अगर एडोलेसेंट्स की आप हर एक डिमांड पूरी करोगे, सब करोगे, क्योंकि आपको लगता है नहीं तो वो भाग जाएगा या कुछ कर लेगा, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. और अगर आप उनकी कोई भी बात सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, तो वो भी एक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. तो हाउ आर यू मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन व्हाट टू बी गिवन एंड व्हाट नॉट टू बी गिवन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड व्हाट टू डिमांड फॉर, ये बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि किस चीज की डिमांड कितनी करनी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क होता है. दूसरा ये समय वो होता है जब जो लोग होते हैं ना वो एक कुछ सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स भी जो है जो एडॉप्ट करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कई बार देखा गया है कि बच्चे किस तरह से बुरी कंपनी में पढ़ के बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते हैं, कि किस तरह से यही वो समय होता है जिसमें वो सिर्फ अपने आसपास पीयर ग्रुप को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम ऐसा कर सकते हो, और उस वजह से कई बार वो अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं. तो वो ऐसे सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स किस तरह से अडेप्ट करें, तो ये भी एक जो है डेवलपमेंटल टास्क जो है वो किसी भी एडोलेसेंट की जो है वो रहती है.
जी
देखिए कि कुछ जैसे मैंने कहा कि फिजिकल चेंजेस तो एक होते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होती है, हाइट जो है वो बढ़ती है, वेट बढ़ता है, किस तरह से बॉडी प्रोपोर्शन बढ़ती है, और हार्मोन्स का क्या रोल रहता है. उसी तरह से कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो जो होती है एडोलेसेंट्स की रहती हैं. जैसे कि एक उनमें रहता है इमोशनल डेवलपमेंट। आपने पुराने ज़माने में सुना होगा, जो पुराने दादी नानी जो थे वो उस समय में कहते थे कि ये बच्चे का बहुत गर्म खून है इस
हाँ
समय,
जी
और इस वजह से जो है ये गुस्सा करता है, और उस पर ज़्यादा गुस्सा ना करो, ये पता नहीं क्या कर लेगा, इस
जी
तरह से चीज़ें जो हैं। तो इस समय भी जो ये बच्चे होते हैं, इनके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस जो हैं हम कह सकते हैं होते हैं, और बहुत हाई इमोशंस होते हैं। जैसे कि यही वो समय होता है जिसमें वो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को जो है वो बताने लगते हैं। जैसे कई बार वो बोलते हैं कि आई लव दिस फूड, मुझे ये फूड बहुत पसंद है, एंड इस तरह की वर्ड्स यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती है तो वो सिंपली कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से नफरत है। तो वो चाहे किसी चीज़ को डिफाइन करना हो, अपना अपना फूड प्रेफरेंसेस बताना हो, या अपनी बाकी कोई भी प्रेफरेंसेस जो लाइफ से जुड़ी हैं वो बतानी हो, तो उनके इमोशंस जो हैं वो बहुत एक्सट्रीम रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये वो वाला स्टेज होता है जिसमें बच्चे जो हैं ज़िद करके जो है वो अपनी हर ज़िद जो है वो पूरी करवाना चाहते हैं माँ बाप से, और वो कहते हैं अगर आप हमारी ज़िद नहीं पूरी करोगे तो हम लोग जो है वो एक्सट्रीम स्टेप्स जो है वो ले लेंगे। इतनी ज़िद पे बच्चे उतर आते हैं। कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है सुसाइडल टेंडेंसीज भी कई बार उनमें बहुत रहती हैं, क्योंकि उनके एक्सट्रीम इमोशंस जो हैं इस समय में रहते हैं। तो एक तो इस तरह से उनका इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो रहती है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो अगर आप उनकी ज़रूरतें और उनकी डिमांड्स पूरी ना करो तो वो बच्चे जो है रिबेलियस एटीट्यूड जो है वो ले लेते हैं। रिबेलियस एटीट्यूड, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं घर से भाग जाऊंगा, या मैं घर से, क्योंकि बच्चों का बहुत एक सीधा सा तरीका जो माँ बाप को ऐसे बंदूक कि हम जो है
इमोशनली
ब्लैकमेल करने का जो है वो उनका
हाँ
स्टेज रहता है कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानोगे तो बहुत रिबेल बन जाते हैं। तो हार्मोन्स का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल रहता है, और उनमें ये कुछ इमोशनल इश्यूज जो हैं वो एडोलसेंस के साथ रहते हैं। दूसरा आता है कि उनमें सोशल डेवलपमेंट में जो है, अगर हम बात करें कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सोशल डेवलपमेंट में भी जो है वो भी बहुत चेंजेस उसमें आते हैं। सोशल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे जब बच्चे होते हैं तो उस समय पे उनकी सारी डिपेंडेंस जो होती है माँ बाप पे रहती है, लेकिन आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जैसे ही बच्चा जो है वो अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो जब उनका ये वाला स्टेज जो उनका रहता है, मतलब लगभग 12 साल की उम्र से लेके जो उनका 14 15 16 17 साल तक की उम्र का रहता है जो उनका स्टेज, तो उस समय उनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स मेरे आसपास क्यों हैं, मतलब उनको लगता है कि मम्मी अगर मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं तो मम्मी मेरे साथ क्यों बैठी है, हाँ इनको नहीं बैठना चाहिए। तो वो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें रहती हैं, और उनका डिपेंडेंस जो होता है दोस्तों पे हो जाता है। वो समय होता है जब उन्हें जो जो अपने जो आसपास के अपने दोस्त है, पीयर ग्रुप है, वही उनको बहुत अच्छा लगता है। वो ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी सब बातें जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, और पेरेंट्स पे उनकी डिपेंडेंस जो है वो कम रहती है। एक तो ये उनका सोशल डेवलपमेंट में एक ये चेंजेस रहते हैं। दूसरा, उनको ऑपोजिट सेक्स को लेके अट्रैक्शन जो है वो इसी टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा रहती है। ये उनकी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये किस वजह से होती है, जो सेक्शुअल मैच्योरिटी जो है वो बच्चों में आती है। दूसरा रहता है कि ये वो समय होता है जिसमें एडोलेसेंट्स जो है ना एक बिलीफ सबसे बना लेते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं, वो चाहे किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए हों, या फिर वो किसी पॉलिटिकल बिलीफ और एटीट्यूड्स जो है वो अपने बनाते हैं। इस टाइम पे जो वो बनाते हैं वो बहुत फर्म एटीट्यूड्स और बिलीफ्स जो है वो अपने बनाते हैं। कई बार स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड्स बिलीफ्स जो है वो अपनाते हैं। उसके बाद जो है ये जो बिलीफ्स होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि जो भी वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बेसिस पे जो है वो समझना चाहते हैं चीज़ों को। ये इनके लिए जो फिल्म के रोल मॉडल्स वगैरह होते हैं वो उनको उनको बहुत फैसिनेट करते हैं, और इस समय पे जो किसी हीरो हीरोइन ने कह दिया उनके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा उनके घर पे जाओगे आप तो जो एडोलेसेंट्स हैं बच्चे, उन्होंने अपने पोस्टर्स भी जो है
रूम में
उन्होंने उनके लगाए होते हैं, जो मीडिया वाले लोग, मतलब जो बॉलीवुड एक्ट्रेस और कोई भी कोई भी जो फिल्मकार है,
उनको अच्छा लगे प्रभाव,
वो उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो इन लोगों से इस समय जो है रहते, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, वैसा हेयर स्टाइल ये वो। तो ये सब सोशल चेंजेस जो है उनमें बहुत आ रहे होते हैं, और ये जो मीडिया का है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है उनमें रहता है. एक ये इस समय जो बच्चे होते हैं वो अपनी बॉडी इमेज को लेके जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, जिससे उनको लगता है कि सब लोग जो है वो उन्हीं की तरफ देख रहे हैं. लड़की को लगेगा कि अगर मुझे पिंपल हो गया है तो दैट मीन सब लोग ये देख रहे हैं कि मुझे क्या हुआ है. तो एक उनमें ये कॉन्शियसनेस रहती है. दूसरा बॉडी इमेज में उनको वो एक बॉडी इमेज जो है वो मेंटेन करके हमेशा अपनी रखना चाहते हैं. इसी समय में यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं सिर्फ एक अपने लिसनर्स की जानकारी के लिए बता रही हूँ. एनोरेक्सिया नर्वोजा या ब्लूमिया नर्वोजा करके दो बीमारियाँ होती हैं जो जो बच्चे हैं स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो डेवलप कर लेती है, जिसमें अपनी फिगर को पतले से पतला रहने के लिए वो खाना पीना छोड़ देते हैं. तो बिल्कुल जो है वो खाना पीना जो है किस तरह से छोड़ देते हैं और वो किस तरह से एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. तो रिसर्चर्स में भी ये काफी ज्यादा प्रूफ किया गया है कि जो भी मॉडल्स वो लोग टीवी पे देखते हैं इनका इन्फ्लुएंस जिससे मैंने बताया, तो उनको लगता है कि हमें बिल्कुल इनके जैसा बनना है. उनके जैसे बनने के एवज में जो है वो इस तरह की एक्सट्रीम स्टेप्स जो है वो उठा लेते हैं. तो जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की जैसे हमने बात की, ये सोशल डेवलपमेंट में आता है, वैसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. तो जैसे पियाजे ने कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि आप फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आते हैं. फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जैसे ऐसा नहीं है कि अब मैंने जो आपको कह दिया आपके लिए वही पत्थर की लकीर हो जाती है. ये वो समय है, ये वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिस समय बच्चे जो है वो अपने आप आंकलन करते हैं क्या सही है क्या गलत है. वो इतनी समझ रखते हैं, आप उनको कोई क्वेश्चन देंगे जैसे कि कुछ भी चाहे जैसे कहते हैं ना वो एनालिटिकल रीजनिंग उनमें इस समय डेवलप हो रही होती है. ऐसे नहीं है कि एज इट इज वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो बहुत घुमा फिरा के अंदर तक जो है उनमें ये क्षमता रहती है कि चीज़ के अंदर तक जाके उसको समझे और उसका एनालिसिस करे. उनका रीजनिंग पावर जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो इस समय में रहता है. और लास्टली एक इसमें आता है जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट. मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो आप अपने अपने जीवन के मूल्य जो है वो आप अब इस समय जो है वो बनाते हैं. अब उनमें बहुत एथिकल सेंस और राइट और रॉन्ग का भी उन्हें समझ आने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है. जो उनके आइडियाज होते हैं वो सिर्फ जो उनके आसपास जो उनके माता पिता या जो बड़े बूढ़े होते हैं सिर्फ उन्हीं पर रिलाई नहीं करते हैं वो कि जो मम्मी ने कह दिया वही सही है या जो मेरे पिताजी ने कह दिया वही सही है. वो अपने आप भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. अगर मेरे पेरेंट्स जो है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के लिए, अगर हम रिलीजियस ग्रुप ना गए पर्टिकुलर पार्टी के लिए कोई ओपिनियन रख रहे हैं तो वो एज इट इज उनकी ओपिनियन नहीं मानते हैं. वो अपने आप आंकलन करते हैं कि क्या मुझे क्या सोचना है, मॉरली व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, हर चीज को देख के इतनी क्षमता उनमें इस समय में आ जाती है. इस समय में वो ये नहीं सोचते कि मुझे किसी के सामने अच्छा बनना है. मतलब ये अच्छा बनने के लिए नहीं, उनका एक क्वेश्चनिंग माइंड होता है, बहुत इनक्विजिटिव होते हैं. ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस कंट्री के साथ युद्ध हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है. वो बहुत क्रिटिकल एनालिसिस स्टेज में इस टाइम आते हैं. ये वो स्टेज होती है जिसमें एडोलेसेंट्स जो होते हैं ना जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको अच्छे से समझते हैं. अब उन्हें पता चलता है कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एथिकली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उनका पर्सनल वैल्यूज जो हैं लाइफ की वो भी बहुत बढ़ती हैं. और जैसे कोहलबर्ग ने जो है फॉर्मुलेशन ऑफ मोरालिटी पे एम्फेसाइज किया था कि जस्टिस की तरफ जो है वो इस समय वो ज्यादा जाते हैं वाइल इग्नोरिंग अंडर प्लेइंग द रोल ऑफ फीलिंग एंड इन द केयर ऑफ मॉरल डिसीजन मेकिंग. मतलब उनको ये लगता है कि क्या सही है, एक्चुअली ये मत देखो कि किसने जो किया वो क्या किया, ये समझो कि जो किसी ने कुछ किया उसके पीछे रीजन क्या था. मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया तो गलत करने के पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी. मतलब ये मॉरल डेवलपमेंट और रीजनिंग जो है वो इस समय में बच्चों में जो है वो डेवलप हो पाती है. तो ऑल इन ऑल हम ये कहेंगे कि एडोलेसेंट एक वो स्टेज है जिसमें बच्चे जो है एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं. आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ. ना तो मुझे बड़ा होने देते हैं पूरी तरह से, ना मुझे छोटा रहने देते हैं. तो वो एक जो उनका ये जो थिन लाइन रहती है उससे वो बच्चे जो है वो जूझते हैं. कि हम हमेशा से ये अभी जिस तरह से मैं एक्सप्लेन भी कर रही थी कि जिस टाइम हम एडोलेसेंट में होते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं. कुछ कॉमन एडोलेसेंट प्रॉब्लम रहती है, जैसे मैंने कहा बॉडी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं. जैसे आपके फेस पे कोई पिंपल हो जाए तो उसको लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं. कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं. मूडीनेस बहुत रहती है और एंगर, हाइपर सेंसिटिविटी, हर एक चीज में रिबेलियस एटीट्यूड जो है वो रहता है. और कुछ जो प्रॉब्लम्स जो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स है वो रहती है ड्रग एडिक्शन. जैसे कि बच्चे, यही वो समय होता है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो ड्रग एडिक्शन की समस्या होती है. अल्कोहलिज्म की होती है, स्मोकिंग की होती है, ट्रुएंसी की होती है. तो यही सब चीजें हैं जिनसे उनको इन सब चीजों को डील करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पेरेंट्स का रहता है, पीयर ग्रुप का रहता है और आपके टीचर्स का रहता है. वो किस तरह से आपको समझाते हैं, किस तरह से आपको सही गलत, और आप अपने आप किस तरह से समझते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं. तो ये चीज जो है इन्हें हेल्प करती है टू कोप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट थिंग. और लास्टली मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि कुछ कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जैसे हमने बताया सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज किस तरह से वो इंटॉक्सिकेशन और इन सब चीजों में जो है वो इस समय पे इस अवस्था में जो है वो पड़ जाते हैं. तो उनकी संगत का बहुत असर रहता है. तो ये बहुत जरूरी है कि वो सोच समझ के ये देखें कि उनको किस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए. इस चीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंट के लिए कि वो, क्योंकि वो अपनी इमेज से बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं. चाहे वो उनकी बॉडीली इमेज हो, चाहे वो उनका ये इमेज हो कि मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता, सेल्फ एस्टीम. तो इसमें होता है कि अगर आपका सेल्फ एस्टीम जो है वो अपने आप में, आपको अपने आप पे विश्वास है, तो आपको अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर कोई चीज मुझे गलत कह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो साथी है वो मुझे इस बात से बहका रहा है कि अगर तुम सिगरेट नहीं पीते हो या ये तुम इस तरह की चीज ट्राई नहीं कर रहे हो तो तुम में हिम्मत नहीं है.
बिल्कुल.
तो उसका ये मतलब है कि उनको ये समझ आना चाहिए कि ये हिम्मत और नहीं हिम्मत का बात नहीं
बात
है.
आई
शुड लर्न टू से नो. मुझे बोलना है कि नहीं ये गलत है. कई बार बच्चे जो होते हैं वो नहीं बोल पाते.
बिल्कुल.
उनको ये नहीं पता है. तो ये बहुत जरूरी है कि वो ये चीजें जो है वो समझें कि जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, और राइट जो रॉन्ग है उसको मुझे नो कहना है. बस यही चीज है, असर्टिव होना है. दूसरे इसमें चीज आता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इस टाइम बहुत होते हैं. तो बच्चों को जो है वो सेक्स एजुकेशन इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि वो समझे कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर दैट दे शुड एडॉप्ट. अगर वो नहीं करते हैं तो वो अपने आप को कितने बड़े समस्या में जो है वो डाल लेते हैं. इसमें टीन एज प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो बहुत अमूमन
देखने के लिए मिलते हैं.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे समझे. उनके लिए इसमें सबसे ज्यादा रोल, जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स का, टीचर्स का, किस तरह की कंपनी वो रहते हैं. अब कंपनी किस तरह की कंपनी में वो रहते हैं, तो टीचर्स और पेरेंट्स का और गाइडेंस काउंसलिंग का इस समय बच्चों को जो है
जरूरत
बहुत जरूरत रहती है. तो यही मैं कह सकती हूँ कि इस समय पे जो आपके आसपास के बच्चों के जो भी उनका केयर ग्रुप है वो भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और बच्चों को सिखाएं कि रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होता है, ताकि वो अपने एडोलेसेंट पे जो चेंजेस हैं उनसे इफेक्टिवली जो है वो डील कर सकें.